आत्मा में परिग्रह का प्रमाण किया था, परिग्रह का त्याग कर दो कि मैं परिग्रह छोड़ता, जो आवश्यक है वही रखूंगा, बाकी सब का त्याग कर। फिर दसवीं प्रतिमा में अनुमति त्याग। अब अगर कोई उससे कहेगा कि मेरे लिए आपका निमंत्रण है, तो ठीक है, निमंत्रण तो स्वीकार कर लूंगा भोजन करने के लिए, लेकिन कोई पूछेगा कि कैसा बनाना है, क्या करना है, तो कुछ नहीं करेगा। बेटा आकर के पूछेगा कि घर गृहस्थी के काम कैसे करना है, दुकानदारी कैसे, कोई अनुमति नहीं देगा। किसी भी पाप कार्य के लिए अभी तक अनुमति दे देता था, अब अनुमति भी नहीं देगा, तो अनुमति त्याग। और फिर उसके बाद, अभी तो निमंत्रण से भोजन के लिए चले जाते थे, लेकिन अब जो है उद्दिष्ट का त्याग, किसी के निमंत्रण से, उद्दिष्ट मतलब निमंत्रण पूर्वक किसी ने कहा, उनके उद्देश्य से आप हमारे यहाँ आइए, आपका हमारे यहाँ भोजन बना हुआ है, ये हो गया उद्दिष्ट, आप ही के लिए बना हुआ है, आप आइए। तो दसवीं प्रतिमा वाला तो कहेगा कि हाँ हम आ जाएंगे आपके यहाँ, लेकिन ग्यारहवीं प्रतिमा वाला कहेगा अब ऐसे ना आएंगे, हम निकलेंगे, अगर भिक्षा चर्या से मिल जाएगी, जैसे तिलक जी की है ग्यारहवीं प्रतिमा, तो वो भिक्षा वृत्ति से जाएंगे, निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। दसवीं प्रतिमा वाला निमंत्रण स्वीकार करेंगे। ये इस तरह से जो है क्रम क्रम से वो डिटैच होता चला जाता है। ये ग्यारह प्रतिमा है, हाँ, सभी चीजों को प्रासुप करना, अर्थात उसमें उत्पन्न होने वाली जीव राशि से उसे मुक्त कर देना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया रहित करना, प्रासुप करना मतलब बैक्टीरिया रहित करना, आगे उसमें बैक्टीरिया पैदा ना हो। पानी गर्म कर लिया तो पानी में जो बैक्टीरिया पैदा होते थे, बहुत बॉइल कर लिया तो 24 घंटे तक उसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आपने पानी गर्म करके बैक्टीरिया को मार तो दिया, नहीं मारा नहीं हमने, उसको सेव कर दिया वाटर को 24 घंटे के लिए, उसमें तो ऑलरेडी हो ही रहे थे, निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, हम एक सांस लेते हैं उसके में तो 18 बार जन्म मरण हो गए, तो उससे सेव करने के लिए हमने गर्म कर ली। इसी तरह कोई भी खाने पीने की चीज, उसको हम गर्म करेंगे पहले और फिर लेंगे, या फिर उसकी रूप रस गंध बदल देंगे। पानी है, पानी को प्रासिक कर लेते हैं, थोड़ी सी इलायची या कुछ डाल दिया, लौंग वगैरह डाल दी, हो गया एक एक उसके लिए प्रासिक हो। ये इसको बोलते हैं सचित्त से अचित्त बनाना, बैक्टीरिया रहित करना। ये ऐसे श्रावक की, और साधक श्रावक एक लाइन में लिख ले, अंत समय में संलेखना लेने वाले श्रावक को साधक श्रावक कहते हैं। ये आरिका माता जी के मूल गुण कौन से हैं? एक कल क्वेश्चन तो अपना मुनि महाराज जी के और श्रावकों के, श्रावकाचार में तो अपने शुरू कर दिया था, पर आरिका जी के बारे में कोई अपन नहीं बोल पा। तो आरिका तो चार से पूरे 28 गुण होते हैं, चार मतलब माने जाते हैं 28, लेकिन होते हैं कम। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अचेल नाम का तो उनका रहेगा नहीं, चेल वस्त्र धारण करेंगे, स्नान करेंगे, दो दो चीजें ये होंगी, और खड़े होकर भोजन नहीं करेंगे, एक ये कम हो जाएगा। फिर पांचों इंद्रियों का निरोध, ये उनको पार्शियल रहेगा, महाव्रत भी उनके पार्शियल रहेंगे, मतलब कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे, पर रहेंगे तो उनके 28 माने जाएंगे, उनको मुनि के समान दर्जा दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन था कि मुनि महाराज के मूल गुण जो होते हैं वही उनके होंगे क्या, तो होंगे तो वही, पर वो 100% पालन नहीं करेंगे, वो 50% उसको पालन कर पाएंगे। इसमें से कुछ गुण ऐसे होते हैं या फिर श्रावक के धर्म उनके लिए होते हैं, एक्चुअली अगर उनकी वो देखें अपन भावात्मक, तो जो अपन ने गुणस्थान पढ़े थे ना कि 5-14 गुणस्थान, उसमें से उनका पांचवा होता है, पांचवें तक होता है, मुनि महाराज के 6ता-7वां तक होगा, वो कितना भी तप कर लेंगे वो पांचवें गुणस्थान शुरू कर नहीं जाता। ये जब हम गुणस्थान पढ़ेंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा, अभी गुणस्थान का अपने को आइडिया नहीं, पर ये मान के चले कि जो मुनि महाराज के गुण होते हैं वही उनके होते हैं, बस वो उनको पार्शियली पालन कर पाते हैं, और ये कम्प्लीट। हम अपने माता पिता, गुरु भाई और बहन आदि को और लोगों की अपेक्षा ज्यादा प्यार करते हैं, तो क्या इसमें मोहनी कर्म का बंध होगा? होगा, क्योंकि हम मोह की वजह से उनको करते हैं। कर्म फिलॉसफी में एक तो होता है प्राणी मात्र के प्रति अपन अनुराग समझ ले, उसमें से अपन को कौन सा करना है कौन सा नहीं करना ये अच्छा रहेगा। चार प्रकार का अनुराग होता है, एक होता है भावानुराग, एक होता है धर्मानुराग, एक होता है मध्यानुराग, और एक होता है विषयानुराग। इस तरह से चार, तो उसमें जो आपके मध्यानुराग है उसको अपन क्या बोलेंगे? ब्लड रिलेशन, अनुराग होता है ब्लड रिलेशन, कितना भी झगड़ा हो जाएगा भैया भैया के बीच में, लेकिन आखिरी में उनके मन में स्ट्राइक करेगा है तो मेरा ही भाई, ऐसा करके, तो ये मध्यानुराग होता है। एक होता है धर्मानुराग, ये भी मेरे धर्म को मानते हैं, सत्यदेव गुरु शास्त्र को मैं भी मानता हूँ, इसलिए इनके प्रति मेरा अनुराग, जो एक सहज अनुराग होता वो कहलाएगा धर्मानुराग। भावानुराग अपने किसी मित्र के कल्याण के लिए निरंतर चिंतित होना, ये जो है भावानुराग। ये मेरा मित्र है और इसका कल्याण जल्दी से हो जाए, मेरे से भी पहले इसका कल्याण हो जाए, ऐसी भी भावना होती है, वो सबसे उज्ज्वल अनुराग है, वो भावानुराग। और विषयानुराग अपने जो पंचेंद्रिय के विषय है, वो गुलाब की सामग्री है, उनसे अनुरक्त होना वो विषयानुराग है, तो वो संसार का कारण है। बाकी तीन जो है, तीन में जो मध्यानुराग है, ब्रेड रिलेशन है, वो मोह का बंध तो करता है। अगर वैसा ही इसमें अपना प्राणी मात्र के प्रति हो तो फिर वो मोह नहीं कहलाएगा। इसलिए लिखा उसमें कि पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, है ना। उसका यही है कि हम प्राणी मात्र के प्रति एक सहज आत्मीयता तो रखेंगे, लेकिन ये जो कि हमारे अपने हैं, इसलिए इन पे हमारा विशेष अनुराग है, ये हमारा मोह कहलाएगा। ये मोहिनी कर्म का बल से, वो चारित्र मोहिनी का होगा, दर्शन मोहिनी का नहीं, इतना फर्क समझे। इसको सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, हम अपने मात्र, ये हो गया। आयु कर्म बांधे से पहले क्या हमें कोई संकेत मिलता है? संकेत तो विशेष नहीं मिलता है, पर आयु कर्म बंध जाने के बाद जो है थोड़े से इंप्रेशन मालूम पड़ने लगे। अगर व्यक्ति ने अशुभ आयु का बंध कर लिया होगा, अशुभ आयु मानी गई है सिर्फ नरक आयु को अशुभ आयु माना है एक्चुअली, और तीन आयु शुभ मानी गई, मनुष्य आयु, देवायु और तिरंच आयु भी शुभ मानी गई। क्यों मानी है शुभ? तो बोलते हैं कि नरक में तो कोई जीव जाना नहीं चाहता, और चला जावे तो वहां से वापिस आना चाहता है, लेकिन बाकी की आयु कोई जीव भले तिरंच ना बनना चाहे, लेकिन बन जाता है तो फिर मरना भी नहीं चाहता, इसलिए शुभ। ये उसका रीजन दिया। कोई छोटा सा कीड़ा भी होगा, उसको भी अगर कोई कहे कि मैं इसको मार दूं तो इससे जो है इसका दूसरा जीवन हो जाएगा, ये जीवन तो अच्छा नहीं है, तो वो मरना नहीं चाहेगा, वो अपने को सर्वाइव करेगा। इसका मतलब है कि वो उस आयु को प्राप्त करके उसे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो आयु शुभ है। लेकिन नरक आयु ऐसी है जो कि पाना भी नहीं चाहते, वो पाले कोई तो उसको छोड़ना चाहता है कि कब यहां से छूट जाओ। ये एक ही आयु अशुभ है, क्या जिन्होंने व्रत ले लिया, कोई संकेत नहीं मिल सकता। हाँ, जिसने आयु बंद कर लिया है, संकेत यही मिलेगा कि उसकी अपनी श्रद्धा मालूम पड़ेगी कि श्रद्धा है कि नहीं उसके अंदर। अगर श्रद्धा नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई बुरी आयु बंद गई, व्रत नियम संयम की तरफ रुझान नहीं है तो कोई बुरी आयु बंद गई है। क्या उन्होंने जिन्होंने व्रत लिए सिर्फ उनकी देवायु बनती है? ऐसा नहीं है। व्रत लेने वाले के लिए बंधेगी तो देवायु को भी उसके अच्छे परिणाम रहेंगे, अन्यथा व्रत लेने वाले को मनुष्यायु बन सकती, लेकिन फिर व्रत लेने वालों को मनुष्यायु बंधेगी तो वो भूमिका जाकर के मनुष्य हो जाएगा, अच्छी जगह मनुष्य, मनुष्य भी होगा तो अच्छी जगह मनुष्य होगा, तिरंच होगा तब भी वो अच्छी जगह तिरंच, वो भूमिका तिरंच हो जाएगा। जिसने मनुष्य तिरंच आयु बांध ली है और फिर बाद में उसके सम्यक दर्शन हुआ, व्रत नियम दिए तो फिर, लेकिन देवायु जिसने नरक आयु बांध ली वो न ले पाएगा व्रत नियम से, ये उसके पीछे वो था। तो फिर देवायु को शुभ और मनुष्य आयु को अशुभ क्यों माना? नहीं, मनुष्य आयु को अशुभ नहीं माना, मनुष्य आयु शुभ है क्योंकि उसी के द्वारा तो मोक्ष होता है, मनुष्य आयु के द्वारा, इसलिए उसने अशुभ नहीं माना। अशुभ तो सिर्फ नरक आयु, बाकी तीन आयु में शुभ है। पर व्रत के साथ संबंध यह है कि जिसने व्रत ले लिए हैं अब उसको कोई भी आयु बंधेगी तो देवायु बंधेगी, प्रायोरिटी उसकी रहेगी। फिर मनुष्य आयु उसको अगर बन गई है तो वो भोग भूमि जाकर हो जाएगा, तिरंज भी होगा तो भोग भूमि का होगा, ये इसका। फिर नरक से अगर कोई जीव जाता है तो क्या उसे अपने पूर्व जन्म का याद रहता है? नहीं रह पाता। ये व्यवस्था अगर होती ना तो अपन का जल्दी से कल्याण हो जाता। काश अगर अपने को पुराना सब याद रहता तो बहुत जल्दी विरक्ति हो जाती कि देखो जिससे आज हम अच्छे से बात करते हैं हमारा शत्रु रहा हो, और जिसको जो हमारा मित्र था वो पहले शत्रु हो सकता है, जो आज शत्रु है वो कब बहुत अच्छा मित्र रहा हो, तो मालूम पड़ेगा कि कैसा जीवन है। ये नहीं हो पाता, पूर्व जन्म का याद नहीं। तो क्या हम अभी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो और जन्मों में हमारे साथ जाता है? ज्ञान तो हमारे साथ जाता है, या इसी जन्म तक नहीं, इसी जन्म तक जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो आगामी जीवन में भी साथ जाएगा, और जितनी जिसने ज्ञान की आराधना करी है अगले जीवन में जो है वो सब उसके लिए काम तो आती, भले स्मृति ना रहे। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन आपने नमोकार मंत्र पढ़ा है उस ज्ञान के द्वारा, तो हो सकता है अगले जीवन में आपको नमोकार याद ना रहे, पर ज्ञान तो है, जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको फिर से सारी चीज याद आएगी, ये सुविधा रहेगी। पर ज्यों का त्यों जैसा अपन ने जैसे टेप में कर लिया है तो वैसा ज्यों का त्यों अपन को बाद में सुनने मिल जाए, वो नहीं होगा। ज्ञान तो रहेगा पर उसका जैसा आप अगले जीवन में उपयोग करेंगे वैसा आपको हो जाएगा। हाँ, जिस डायरेक्शन में आप जानना चाहेंगे उस डायरेक्शन में होगा। अब बताइए और कोई क्वेश्चन? कल नहीं पढ़े, ग्यारहवीं प्रतिमा में दो भेद होते हैं, शुल्लक का और एलक का। कल ही शाम को किसी ने पूछा था कि ये क्या चीज है, तो उसमें एलक जी और शुल्लक जी के में फर्क इतना है
कि क्षुल्लक जो है एक कौपीन रखेगा और एक खंड वस्त्र रखेगा ओढ़ने के लिए। खंड वस्त्र, खंड वस्त्र मतलब अखंड नहीं होगा, पैर ढक जाएंगे तो सिर न ढकेगा, सिर ढकेगा तो पैर न ढकेगा, इस तरह से मतलब पूरा फैल के सोना चाहे ढक करके चादर से तो पूरा नहीं ढकेगा उसको, आधा ही ढकेगा, सिर ढकेगा तो पैर उभर जाएंगे, पैर ढकेगा तो सिर उभर जाएगा, इस तरह ये खंड वस्त्र कहला। तो दो चीज रखेंगे, एक खंड वस्त्र चादर जिसको कहेंगे ब्रैकेट में चादर, और दूसरा कॉपी, दो चीजें रखेंगे। कॉपी क्या बोलते हैं उसको अपनी भाषा में, लघु बोलते हैं कॉपी उसको संस्कृत में, कॉपी बोलते हैं। तो दो रखेंगे, फिर जो एलक जी हैं वो सिर्फ एक कॉपीन रखेंगे, खंड वस्त्र छोड़ देंगे। छुल्लक जी कटोरा साथ में रखेंगे, पात्र में भोजन करेंगे, बर्तन में, और एलक जी हाथ में भोजन करेंगे, ये फर्क है। छुल्लक जी को केश लॉन्च करना जरूरी नहीं है, एलक जी को केश लॉन्च करना जरूरी है, ये हो गया इस तरह डिवाइडेशन। 11 प्रतिमाएं दोनों की है लेकिन ग्रेडेशन हो गया दोनों। और एलक पद तब दिया जाता है अक्सर, अब नहीं है वैसा, एलक पद तब दिया जाता था जबकि मुनि बनने की क्षमता ना हो, तो एलक बनो, एलक को छोटा मुनि कहते हैं, एलक छोटा मुनि, मुनि के समान सब कुछ करेगा। पर अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब तो धीरे धीरे ब्रह्मचारी से फिर एलक बनो, छुल्लक बनो, फिर एलक बनो, तपस्या की दृष्टि से अब धीरे धीरे बढ़ाते हैं। पर पहले यह था कि जो बन नहीं सकता है उसको एलक बनाया जाए, ये कंडीशन इस तरह से।
श्रावक
वो पाक्षिक श्रावक कहलाएगा, वो नैष्ठिक श्रावक नहीं कहलाएगा। नैष्ठिक श्रावक वाला एक प्रतिमा ले लेता है तो वो नैष्ठिक श्रावक, पहली प्रतिमा से ग्यारहवीं प्रतिमा तक के श्रावक को नैष्ठिक श्रावक कहेंगे। जो अपन ने कल प्रतिमा पढ़ी पहली प्रतिमा से ग्यारहवीं प्रतिमा तक, तो वो सब नैष्ठिक श्रावक, पहली प्रतिमा ले ली तो नैष्ठिक घर में रहेगा, दसवीं प्रतिमा तक लेकर के घर में रह सकता है, ग्यारहवीं प्रतिमा में उसे घर छोड़ करके मुनियों के समीप जाकर के छुल्लक या एलक की दीक्षा लेना, ये था।
और जो इससे नीचे आएगा, जो सपोज वो सात हमने गुण माने, उन सात गुणों में से एक जैसे रात्रि भोजन में त्याग, रात्रि भोजन में त्याग नहीं करता
गृहस्थ है,
तो वो तो श्रावक से भी नीचे हो जाएगा,
वो गृहस्थ कहलाएगा। गृहस्थ और श्रावक में इतना फर्क है, श्रावक जो है तीन बातों को जरूर धारण करेगा, नहीं तो वो गृहस्थ कहलाएगा, श्रावक ना कहलाएगा।
तो ग्रस्त जो
है दसवीं ग्यारहवीं प्रतिमा से प्रणाम होता है, इक्ष्वामी कहते हैं दसवीं और ग्यारहवीं प्रतिमा, नौवीं प्रतिमा तक वाले को नहीं कहते हैं, नौवीं प्रतिमा वाले तक को जय जिनन कहते हैं। अभी नहीं प्लीज, नहीं तो मेरा पूरा टाइम निकल जाएगा। अब अपन अपने यहाँ पर तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हमें अपने पुण्य के द्वारा एक तो मनुष्य मिलता है, जिसको मनुष्य मिलता है फिर और अधिक पुण्य करता है तो अच्छा कुल मिलता है, ये भी पुण्य है, फिर और अच्छा कुल के साथ में उसे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा मिल गई, देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा के बाद उसे व्रत नियम करने का वो मिल गया पुण्य, तो और ज्यादा पुण्य, इस तरह से क्रम से बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे चीज नहीं आती। ये कहने के लिए ठीक है कि ज्ञान से विनय आती है और फिर विनय से आपके धन आता है, हमारे यहाँ उसको प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए अपन उसको बीच में नहीं जाएंगे, धन से धर्म नहीं होता। अपने यहाँ हाँ, अपने यहाँ कोई व्यक्ति पुण्यात्मा होगा तो उसे धर्म करने की इच्छा जागृत होगी, इतना तो हो सकता, लेकिन कोई को धन प्राप्त हो वो धर्म करे ही, ऐसा कोई नियम है? एक गरीब आदमी भी धर्म कर सकता है, इसमें जाए कल पन्ने कहाँ तक पढ़ लिया श्रावक के, अच्छा अच्छा ये समझ गया। कल 11 प्रतिमाओं का अपन ने अलग अलग पढ़ भर लिया था और नाम लिख लिए थे, उनका डिस्क्रिप्शन लिखना है एक चीज तो ये है, और दूसरी दर्शन प्रतिमा का स्वरूप समझेंगे तो दर्शन की प्रक्रिया हमें आनी चाहिए पहले। दर्शन की प्रक्रिया बहुत आसान है, भगवान के मंदिर जाने का पहले मन बनाया, फिर रास्ते में हम मंदिर जा रहे हैं इस तरह की भावना लेकर के गए, रास्ते में दूसरे काम ना करेंगे। एक्चुअली जब हम दर्शन करने जाएं तो हम दूसरे काम निपटा के नहीं जाएंगे, दर्शन करें, दर्शन करने जा रहे हैं तो पूरी भावना दर्शन की है। वहां जैसे ही हम पहुंचे और जैसे ही कहते हैं कि दर्शन हो भगवान का, तो फौरन एक प्रणाम लेंगे, पहला प्रणाम होगा, ये हमारे अहंकार को तोड़ेगा। हम झुक गए एकदम जाकर के, भगवान को बड़ा मान लिया हमने, ये पहला। फिर खड़े होकर के फिर स्तुति करेंगे भगवान की, जो हमको आता है, टूटी फूटी प्रथम प्रभुपत पावन आती है तो भक्तांबर आता है, तो फिर स्तुति करी होता है। स्तुति करने के बाद दूसरा प्रणाम ले लेंगे, ये दो प्रणाम हो गए, फिर खड़े होंगे और अब जो है मैं जो लेकर के आया था सब आपके चरणों में समर्पित, फिर जो भी हम लाए हैं वो सब समर्पित करेंगे। दोनों हाथ खाली हो गए हैं, हमने पहले मैं को छोड़ा था, अब मेरेपन को भी छोड़ दिया, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं भी आपका हूँ भगवान, और सब कुछ समर्पित करके हाथ नीचे करके नौ बार नमोकार अपने शरीर से ममत छोड़ते हैं, नौ बार नमोकार करके फिर तीसरा प्रणाम निवेदित करते हैं। एक्चुअली तीन प्रणाम निवेदित करना एक देवी पर, ये दर्शन की पूरी बात। एक प्रणाम जाते ही साथ जैसे ही दर्शन हो, फिर दूसरा प्रणाम उनकी स्तुति करके भगवान की, फिर तीसरा प्रणाम उनको सब कुछ समर्पित करके, फिर तीसरा प्रणाम निवेदित करेंगे नौ बार, ये दर्शन। कोई बात नहीं, बाएं हाथ में इसमें इसमें लिए हैं, इसमें लेकर के जो है पूरे चढ़ा दिए,
फिर अब
बचा लेंगे उसमें। पर ऐसा नहीं करेंगे कि ये मुट्ठी में से थोड़ा ऐसे चढ़ा दिए बचा लिए इसमें, ऐसा नहीं करेंगे। इसमें जितने लिए हैं वो पूरे पूरे चढ़ा दो और फिर उसके बाद, नहीं तो फिर ऐसा होगा थोड़े थोड़े सब के लिए, पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए भगवान श्रावक को, कब से कब खा ले। पर देखो एक चावल चढ़ाते तो एक मन अलग है, वो गुन्नक में बाद में जाकर के डालना हूँ, यही करना ठीक, ये दर्शन तो कोई बात नहीं। अब एक एक प्रतिमा का स्वरूप लिखे क्या है चार्ट में, मेरे पास कहीं बढ़िया से लिखा हुआ है, मैं आपको वो लिखवाए तो ज्यादा ठीक
है।
वो तो फिर दूसरी प्रतिमा समझेंगे तो सारे समझेंगे अपन, दूसरी प्रतिमा में बारह में समझेंगे वो डिटेल में, ये चावल का चार थोड़ा टाइम लगेगा, देखा ना पहले से ही तय कर लेते कि पहले ही उठ जाते तो अच्छा रहता, हमें मालूम था उठने के बीच में। देनी चाहिए प्रदक्षिणा, प्रतीक है भगवान के प्रति अपने मन वचन काय, इन तीनों से डिवोशन समर्पण की प्रति, या कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी प्रति, या फिर हे भगवान आप तीन लोक के नाथ इसलिए हम आपकी तीन प्रदक्षिणा दे रहे हैं, या फिर तीन लोक में भटकते चक्कर खाते जिंदगी निकल गई, अब मैं आपके तीन चक्कर डाल करके और अपने जिंदगी के चक्कर से बचना चाह रहा हूँ। तीन लोक का चक्कर डालते डालते समय हो गया, जल्दी से तो खाली करो जिसको उठना है। हाँ वो प्रदक्षिणा देने का है, पर वेदी में प्रदक्षिणा देने का नहीं है मान लो जगह, तो फिर बाहर से पूरी दे सकते हैं, एक प्रदक्षिणा नहीं देनी थी, या फिर बिल्कुल नहीं दे, या फिर कम तीन से तीन प्रदक्षिणा आई बात
नहीं।
महाराज जी कहीं कहीं बहुत थोड़ी जगह होती तो वहाँ प्रदक्षिणा देनी चाहिए,
अगर अपने को कम कंजेस्टेड लगे तो नहीं देना चाहिए।
वो
स्वार्थ हो गया, वो स्वार्थ हो गया, वहाँ ये भावना नहीं है कि संसार से पार हो जाए, संसार से पार होने के लिए तो तीन ही ठीक है, लेकिन मेरा काम बन जाए, बेटा नहीं है तो बेटा हो जाए, पैसा नहीं तो पैसा आ जाए, इसलिए 108 लगा लेंगे, तो वो फिर आकांक्षा हो जाए, उस पर कोई लॉजिक नहीं है। मुझे एक वैदिक संस्कृति के थे, उन्होंने बहुत अच्छा लॉजिक दिया था, बोले आप लोगों के यहाँ पर ये प्रदक्षिणा देने का रोज रोज बहुत अच्छा है, आप लोग रोज रोज अपने भगवान से शादी करते हैं कि आप ही हमारे सब कुछ हैं और कोई नहीं हमारा संसार, ये तो एक हो गए हम विवाह की प्रक्रिया, मतलब एक हो गए हम, मान्यता हमारी एक हो गई, अब हम एक दूसरे के वो करेंगे, तो इसी तरह ये प्रदक्षिणा। पर सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि तीन लोक के नाथ हैं और तीनों लोकों से पार हो गए हैं, हम भी तीन लोक के चक्कर खाते खाते जिंदगी हो गई, हम आपके तीन चक्कर डाल के संसार के चक्कर से बचना चाहते हैं, और मन वचन काय तीनों से डिवोट कर रहे हैं, इसलिए भी तीन प्रतीक है, रत्नत्रय के द्वारा आपने इस पद को पाया है इसलिए तीन प्रदक्षिणा रत्नत्रय की प्रतीक, जैसा भी माता। प्रतिमा के बारे में मैं लिखवा देता हूँ आपको, समझ तो लिया है अपन ने।
दो प्रतिमा के धारी में अगर वो व्रत का पूरा पालन करते हैं तो उनको नरक गति नहीं बनेगी।
अच्छा, इसी एक प्रतिमा लेने वाले को भी व्रत हो गया।
इसी तरह से जो ये समय शिखर जी की यात्रा के बारे में देखते हैं तो वो भी हनुमान वाला मुझे बन
जाता है, तो उसका भी प्रभाव है। समय शिखर भाव सहज जो वंदना करता है
ताकि नरक गति,
ये तो है। कई उदाहरण ऐसे भी हैं जिन्होंने आयु बंद कर लिया होगा, उन्हें दर्शन नहीं हुए शिखर जी के, ऐसे भी
उदाहरण
दिखाई देना बंद हो जाता। सामान्यतः पंच परमेश्वरी अनंत से दादी की मूर्ति को भी प्रतिमा कहते हैं, है ना, ये भी हमें जानना चाहिए प्रतिमा का एक अर्थ। लेकिन विशेष रूप से श्रावकों के द्वारा क्रम क्रम से पालन की जाने वाली प्रतिज्ञाओं को प्रतिमा कहा जाता है। श्रावकों के द्वारा क्रम क्रम से पालन की जाने वाली प्रतिज्ञाओं को प्रतिमा कहते हैं। ये श्रावकों की विकास की 11 श्रेणियां हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ये श्रावक के विकास की 11 श्रेणियां हैं, क्लासेस या कि ग्रेडेशन, ग्रेड। प्रतिमाओं की विशेषता यह है कि आगे आगे की प्रतिमा में व्रतों का पालन पूर्व की प्रतिमा के व्रत नियमों सहित होता है। आगे आगे की प्रतिमा आगे आगे की प्रतिमा में व्रतों का पालन पूर्व की प्रतिमा के व्रत नियमों सहित होता है, ये जानना बहुत आवश्यक है। दर्शन प्रतिमा, इसको अपन ऐसे पॉइंट बना के लिखते हैं, है ना, तो जल्दी रहेगा। वैसी परिभाषा ना लिख करके पॉइंट में लिखते हैं कि क्या क्या करेगा। तो सबसे पहले सच्चे देवगुरु शास्त्र में दृढ़ श्रद्धा, सच्चे देवगुरु शास्त्र में दृढ़ श्रद्धा, पहला पॉइंट। दूसरा, सप्त व्यसन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, ये तो पहले से था, पाक्षिक था इसलिए, पर इसमें भी लिख लीजिए। अभक्ष्य पदार्थों का त्याग, इसमें सब आ गया भैया, अभक्ष्य में मतलब मर्यादा वाला भोजन करेगा, ब्रैकेट में लिखते हैं मर्यादा का भोजन। अब मर्यादा का भोजन मतलब अभी मर्यादा जाननी पड़ेगी, किस पदार्थ की कितनी मर्यादा होती है, ये सब जो है पहली प्रश्न वाले को पालन। कितनी बातें हो गई, सच्चे देवगुरु शास्त्र में दृढ़ श्रद्धा, सप्तवसन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, अभक्ष पदार्थों का त्याग, ठीक है, ये पहली प्रतिमा में पालन करना पड़ेगा। दूसरी प्रतिमा में ये सब चीजें रहेंगी, लेकिन व्रत प्रतिमा कहलाती है, तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत लिख लो, शायद कभी लेने का मन हो जाए किसी का। उनके प्रति श्रद्धा हो जाएगी, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत और 5 अणु व्रत। अणु व्रत तो अपन को मालूम है, स्थूल हिंसा का त्याग, तो अहिंसाणु व्रत, स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ का त्याग, तो सत्याणु व्रत, स्थूल रूप से चोरी का त्याग, तो अचोरी अणु व्रत, स्थूल रूप से नहीं अब स्थूल नहीं आएंगे, स्वदार संतोष, इसको ब्रह्मचर्याणु व्रत कहेंगे। स्वदार संतोष मतलब जिससे हमने विवाह किया है उसमें ही हम संतुष्ट हैं और दूसरे के प्रति हमारे मन में अनचेस्टिनिटी नहीं है, है ना, ये हो गया, ये ब्रह्मचर्याणु व्रत। और ठीक है, हाँ, और परिग्रह का प्रमाण, तो परिग्रह परिमाण अणुव्रत, या इसी को कहेंगे इच्छा परिमाण, प्लीज। इच्छा परिमाण स्थूल मतलब कोर्सली है ना, फाइन भी नहीं है, ग्रॉसली भी कहते हैं, मतलब क्या कहेंगे उसको,
पार्शियल
परफेक्ट तो नहीं कहेंगे, पार्शियली तो है, पार्शियली कहेंगे, आचार्य तुलसी के अनुव्रत में एक सुविधा है कि एक अनुव्रत ले सकते हैं, दो अनुव्रत ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह की प्रक्रिया नहीं है, दिगंबर आमने में एक अनुव्रत लेंगे तो पांचों लेना पड़ता है, अनुव्रत वही, अनुव्रत वही, आचार्य तुलसी के भी अनुव्रत वही, वही पांच अनुव्रत वही, आचार्य तुलसी वाले भी सेम, पूरा शैतानगर दिगंबर में कहीं बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन नहीं है, सारे मत वही है, थोड़ा सा फर्क हो गया है, बस बिजीनेस हो गई थोड़ी सी, और ये प्रतिमा भी क्यों की तो है, लेकिन इनमें एक एक चीज है कि दिगंबर आमना में दर्शन प्रत में लेनी तो पूरी जिंदगी भर, वहां ऐसा है कि एक महीने पालन कर लो दर्शन प्रत, इजी हो फिर छोड़ दे, ये इजी हो, इतना है व्रत। अब देखिएगा तीन गुण व्रत में, तीन गुण व्रत लिखिएगा, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं ये उमा स्वामी के अनुसार लिखवा रहा हूँ, रत्न शाप्ताचार में अपन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे दिग्व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड व्रत, थोड़ा कंफ्यूज हो जाए पर आप लिख लीजिए, वह दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये तीन गुण व्रत, ये जो अनुव्रतों के गुणों को बढ़ाने वाले व्रत हैं वे गुण व्रत कहलाते हैं, या जिन व्रतों के पालन करने से अनुव्रतों में वृद्धि होती है उन्हें गुण व्रत कहते हैं, और जिनसे मुनियों के आचरण की शिक्षा मिलती है उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं, ये श्रावक के दूसरी प्रतिमा में आ जाए, आज अपन बहुत आराम से लिख रहे हैं, है ना, कोई नहीं कह रहा कि ठहरो। दिग्व्रत में दसों दिशाओं की सीमा करनी रहती है, दिग्व्रत में दसों दिशाओं की सीमा करनी है, फिर देश व्रत में जो सीमा रखी है उसमें फिर देश, प्रदेश और ग्राम, मोहल्ला, इस सब की सीमा करने ये लिख दीजिए, जिसमें देश, प्रदेश, ग्राम इत्यादि की सीमा की जाए वो देश व्रत है, जिसमें दिशाओं की सीमा करी जाए ब्रॉड हो गया वो हो गया दिग्व्रत, अनर्थ दंड मतलब पर्पज लेस सिंपलनेस, बिना प्रयोजन के पाप नहीं करूंगा, ये हो गया अनर्थ, एक तो होता है अर्थ, एक होता व्यर्थ और एक होता अनर्थ, जिसमें कुछ प्रयोजन हो वो तो अर्थ सहित है और जिसमें वेस्ट है व्यर्थ है, लेकिन जिसमें उल्टा और पाप हो रहा अनर्थ हो रहा है तो अनर्थ दंड है, ये पर्पस है, श्रावक कोई भी काम करेगा तो उसमें हिंसा तो होगी, लेकिन खाना बनाना है इसलिए हिंसा करनी पड़ी, लेकिन बिना उसके हिंसा करी, आपने खाना नहीं बनाना था फिर भी आपने हिंसा करी तो अनर्थ होगी, चले जा रहे थे अब मैं इसमें पद में है, पांच प्रकार का अनर्थ दंड होगा, पांच प्रकार के अनर्थ दंड लिखना है क्या, पांच प्रकार हाँ इसमें तो समझ में आता है, गोशिप गपशप करना ये भी है, दूसरे की निंदा सुनना ये भी है, अपध ध्यान दूसरे के बारे में बुरा चिंतन करना, प्रमाचर्य चले जा रहे हैं फूल पत्ती को धक्का मार दिया, पानी का नल चालू कर दिया, पंखा वैसे ही खाली चल रहा है, इस तरह ये सब प्रमाचर्य कर रहे हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं अनर्थ दंड में आ जाते हैं, अपन समझते हैं जो चीजों में पाप है अननेसेसरी। फिर शिक्षा व्रत, शिक्षा व्रत में सामायिक क्रोशोपवास भोगो भोग परिमाण और अतिथि संविहार या भैया व्रत ब्रैकेट, आप जल्दी बोल दिया क्या क्या हो गया, भोगो भोग परिमाण परिमाण भोगो भोग परिमाण फिर अतिथि संविहार ब्रैकेट में भैया व्रत, सेवा, सेवा को भैया व्रत कहते हैं, कोई कठिन शब्द है थोड़ा, सेवा को सेवा न कह के भैयाव्रत कहते हैं। सेवा और भैयाव्रत में फर्क इतना है कि सेवा सामान्य रूप से सबकी की जाती है, लेकिन जो रत्नत्रय से युक्त हैं या जो मोक्ष मार्ग में लगे हैं उनकी सेवा करने को भैयाव्रत कहते हैं, और सामान्य रूप से सबकी सेवा करने को सेवा करते हैं। माता पिता की सेवा करते हैं तो वो सेवा कहलाएगी, लेकिन जब हम जो मोक्ष मार्ग पे लगे हुए हैं उनकी सेवा करेंगे भैयाव्रत कहलाएगी। ये हो गया तीनों व्रत, इनके बारे में समझना है क्या? सामायिक तो सामायिक है, उन क्षणों में हम पाप से बच करके और अपने आत्मा का ध्यान करेंगे, पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करेंगे, सामायिक हो गया। फिर प्रोषदो उपास, पर्व के दिन उपास करना, प्रोषद मतलब पर्व और पर्व मतलब अष्टमी चतुर्दशी, तो अष्टमी चतुर्दशी को उपास करना, ये प्रोषदो उपास। फिर भोगोपभोग, खाने पीने की पहनने ओढ़ने की चीजों की लिमिट करना, खाने पीने की पहनने ओढ़ने की चीजों की लिमिट, ये भोगोपभोग परिमाण। और फिर अतिथि संविभाग, मतलब जो अतिथि हैं उनके लिए भी उनकी सेवा करना, उनको चार प्रकार के दान हैं ये सब इसमें आ जाएगा देने, ये व्रत विस्तार है। इससे क्या होगा, मुनियों की शिक्षा मिलेगी उससे। सामायिक करेगा तो थोड़ी देर बैठ करके देखें कैसा लगता है, मुनि महाराज जी दिन भर एक जगह बैठे रहते हैं, हम थोड़ा एक घंटे बैठ के देखें कैसा लगता है। मुनि महाराज जी रोज जो है एक बार भोजन करते हैं, दूसरे दिन तक का 24 घंटे तक का उनका उपवास रहता, हम भी एक दिन जो है 24 घंटे नहीं खाएंगे, देखेंगे तो रोज दो उपवास हो गया कैसा लगता होगा। फिर लिमिटेशन कर लिया, बहुत सारी चीजें हैं खाने पीने के लिए भाई हम कम कर लेंगे, पहनने ओढ़ने की ढेर सारी है लेकिन हम लिमिट करके देखेंगे कि क्या होता है। इस तरह से शिक्षा मिलती धीरे धीरे उसकी। ऐसे ही अतिथि संविभाग, जो अतिथि है उसकी सेवा करेंगे, उसके निकट बैठेंगे तो उससे हमें शिक्षा मिलेगी, इसलिए ये शिक्षा व्रत कहलाते हैं। ये 12 व्रत लेने वाला व्रत प्रतिमा वाला, पहले हम ये समझते थे जब घर में कहते थे कि फलाने ने प्रतिमा ले ली, हम सोचते थे कि उनने भगवान जी खरीदे हैं एक तो प्रतिमा लेगी, इसलिए हमने पहले लिखवा दिया उसमें कि मूर्ति वगैरह को भी प्रतिमा कहते हैं, तो हम यही समझते थे। पर ये प्रतिमा ले अच्छा प्रतिमा स्थापित कर ले, वो कन्फ्यूजन होता, प्रतिमा का मूर्ति भी अर्थ है और प्रतिमा का मतलब ये प्रतिज्ञा है। फिर सामायिक प्रतिमा में श्रावक तीनों संध्याओं में सामायिक करेगा, ये तो इजी है, अब तो प्रतिमा का स्वरूप बहुत इजी है, छोटा छोटा लिखना, तीनों संध्याओं में सामायिक करेगा सुबह दोपहर शाम। प्रोषद उपवास, प्रोषद प्रतिमा में नियम से प्रोषद उपवास करेगा। अभी क्या था दूसरी प्रतिमा में कि कर भी लिया एक आसन कर लिया नहीं सधा, तो अब चौथी प्रतिमा ले ली तो जरूर से अष्टमी के पहले सप्तमी को एक आसन करना पड़ेगा, अष्टमी को उपवास करना पड़ेगा, नौमी को फिर एक आसन करना पड़ेगा, जिंदगी भर के लिए, एक आध दिन के लिए नहीं हमेशा के लिए। ये चौथी प्रतिमा प्रोषद उपवास, एक आसन मतलब एक बार भोजन करना, एक आसन कर लिखो, एक आसन मतलब एक भुक्ति, एक आसन मतलब एक एक बार भोजन, प्रोषद का मतलब भी एक बार भोजन होता है, प्रोषद के दो अर्थ है, प्रोषद बराबर एक बार भोजन, प्रोषद बराबर पर्व, दोनों अर्थ है, प्रोषद का अर्थ पर्व भी है, प्रोषद का अर्थ एक बार भोजन भी। ऐसा उपवास जिसमें एक बार भोजन उपवास और एक बार भोजन, प्रोषद उपवास, प्रोषद सहित जो उपवास है वो प्रोषदोपवास, या कि प्रोषद मतलब पर्व, तो पर्व के दिन किया जाने वाला उपवास प्रोषदोपवास, दोनों अर्थ है इसके। तो प्रोषद प्रतिमा में कंपलसरी हो गया, अब वो पूरे जीवन भर करेगा, कोई भी प्रतिमा जीवन भर ली जाती भैया, ये ध्यान रखना। सचित्त त्याग, अब जो है वो खाने की फल फूल इत्यादि सब्जी जल सबको प्रासुक करके ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, इससे लिमिटेशन हो गई अपने आप। सचित्त त्याग मतलब प्रासुक करके ले, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा में लिखे ना, छठी प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग, अब वो मन वचन काय से रात्रि के भोजन का त्याग कर देगा, ना खुद खाएगा ना खिलाएगा ना कोई खा रहा होगा तो समर्थन करेगा, ये छठी प्रतिमा में होगा। अभी तक तो प्रतिमा ली थी बच्चों को जो है खिलाना है तो बनाना है, मेहमान आए हैं सब करता था, लेकिन अब अगर छठी प्रतिमा ले ली तो फिर कुछ ना करेगा, ये इतना। ब्रह्मचर्य प्रतिमा मतलब शील का पालन करना मन वचन का, ऐसे पहले ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया था देखना आप, उसमें क्या किया था कि विवाह किया है जिससे उसमें हम उसी में संतुष्ट हैं, अब क्या किया जिससे विवाह भी किया है उससे भी हमारा संबंध अब भाई बहन की तरह हो गया, जैसे कि बापू ने कहा था बाद में आखिरी में एक दिन बैठे थे
उसमें तो किसी ने पूछा बाप आजू बैठी थी तो कि ये आपकी माँ है क्या, तो धीरे से सोच करके फिर बोले हाँ ये हमारी माँ, अब हमारी माँ हो गई है, हमको नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती है, इसलिए अब्बा जो है वो माँ हो गई। तो ये मैंने मन की विशुद्धि की बात है, ब्रह्मचर्य करना हो गया। आरंभ त्याग प्रतिमा, इसमें श्रावक जो है खेती बाड़ी का सबका त्याग कर देता, लेकिन घर गृहस्थी के काम का त्याग नहीं करेगा वो, ये ध्यान रखना। आरंभ मतलब जिससे अर्निंग होती है, अर्निंग जिससे होती है, व्यापार खेती बाड़ी ये नहीं करेगा आठवीं प्रतिमा लेने के बाद। नौवीं प्रतिमा में परिग्रह का त्याग लिख रहे ना, नौवीं प्रतिमा में परिग्रह का त्याग करेगा तो अपने दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों को रख करके बाकी सबका त्याग कर देगा, ये परिग्रह का अपने पास नहीं रखेगा, अपने उपयोग में भर जो चीज आती है वो भर रखेगा, वस्त्र है, भोजन सामग्री है, अभिषेक पूजा के बर्तन है, बाकी सब बस इतने ही रखेगा और घटा नहीं करेगा। दसवीं प्रतिमा में लिखना, जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा, चार्ट में लिखवा रहा हूँ, एक आईडिया अपन को लग गया, बाकी तो बहुत लंबा है। फिर अनुमति त्याग प्रतिमा है ग्यारहवीं प्रतिमा में, इसमें जो है दसवीं प्रतिमा, मैंने क्या बोल दिया, ग्यारहवीं बोल दिया, नहीं सॉरी, दसवीं प्रतिमा में अनुमति त्याग में कोई भी संसार के कार्यों की अनुमति नहीं देगा, खेती बाड़ी अभी तक नौवीं प्रतिमा तक दे सकता था अपने बेटे को, बेटे ने पूछा कि पापा व्यापार में कैसा करेंगे तो बता देगा कैसा कर लो, खुद नहीं करेगा लेकिन बता देगा। अब दसवीं प्रतिमा में व्यापार खेती बाड़ी की बेटे को पूछेगा कुछ नहीं, भी जैसा तुम्हें करना वैसा, घर में रहेगा दसवीं प्रतिमा वाला, घर में रहेगा, रह सकता है घर में लेकिन रहेगा, अच्छा घर में रह सकता, घर में रह सकता। किसी के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर या अपने घर में ही बुलाए जाने पर भोजन ग्रहण करेगा दसवीं प्रतिमा वाला, अपने घर में भी जब बुलाएंगे घर के लोग कि चलो भोजन कर लो तो जाएगा नहीं, तो कहेगा नहीं कि मुझे भोजन करना है, अपने आप नहीं जाएगा दसवीं प्रतिमा में। लेकिन ग्यारहवीं प्रतिमा में तो किसी के बुलाने से भी नहीं जाएगा, भिक्षा के लिए जाएगा जहां जाना होगा। ग्यारहवीं उद्देश्य त्याग, इस प्रतिमा में श्रावक घर का त्याग कर देता है, मुनि जनों के निकट शुल्लक या एलक के रूप में रहता है, ये ग्यारहवीं प्रतिमा है।
ग्यारहवीं
प्रतिमा नहीं तो होगी नहीं, दस्तक नहीं सकती घर में, ग्यारहवीं तो हो ही नहीं सकती। एक जरूर एक्सेप्शन है कि उन्होंने ग्यारहवीं प्रतिमा ले ली थी और उनके माता पिता का बहुत अनुराग था तो वो वापस घर ले आए थे कि हमें ये कमरा मिला, चुंबक जी बन करके वही मंदिर बना दिया था, वही चुंबक जी पर हमें यहाँ पर भोजन करना, एक्सेप्शन भी है चुंबक जी के लिए होता है ये। अब इसमें कोई चीज इतना पर्याप्त मेरे ख्याल से श्राम का प्यार में ऐसा लिखने अपन जानने मतलब जानने के लिए श्राप मुनि का एक वायु वेश होता है, एक अंतरंग वेश होता है, तो वायु वेश को बोलते द्रवलिंग, लिंग मतलब वेश, इंडेक्स लिंग मतलब चिन्ह भी होता है, तो बाह्य चिन्ह कौन कौन से रहेंगे एक मुनि के, की नग्न शरीर, संस्कार रहित मतलब कोई भवन बहुत नहीं लगाए, ये संस्कार रहित, ना चंदन लगाए हैं, ना दीपोत्र को लगाए हैं, कुछ भी नहीं गए, ये संस्कार रहित नग्न, मुंडित केश तीसरी विशेषता, कटिंग किए हुए नहीं, मुंडित मतलब खींचे गए लॉन्च सहित, ये पीछी और कमंडल, ये बाह्य वेश कंपल्सरी है। अब पीछी कमंडलों के दो हैं, पीछी जो है संयम का उपकरण, उठेंगे बैठेंगे किताब रखेंगे उठाएंगे जीवों की हिंसा होगी तो संयम के पालन करने के लिए पीछी मृदु पीछी का सिर्फ परिमार्जित करके फिर सारा काम करें, तो ये संयम की रक्षा के लिए उपकरण है, संयम का उपकरण। दूसरा उपकरण कमंडलु है शुद्धि के लिए, तो उसको बोलते हैं शौच उपकरण, शुद्धि का उपकरण, इस तरह से दोनों की इंपॉर्टेंस। तीसरा उपकरण ज्ञान का उपकरण है पुस्तक, बस किसी को उपकरण की तरह कम दिखता है तो चश्मा भी देगा उपकरण की तरह, उपकरण वो कहलाता है जो हमारे ऊपर उपकार करे, और परिग्रह वो कहलाता है जिसके प्रति हम मूर्छित हो जाते हैं।
इसके प्रति हमारी मूर्छा नहीं, इसलिए उपकरण है। जिस दिन हमारी इसके प्रति मूर्छा हो जाए कि हमारी पीछे आए हो तो हम नहीं ले जा सकते, या दो धन लो एक की जगह तो परिग्रह हो जाएगा, दो कमल तन रख लो, ये क्लियर है इसमें समझने जैसी चीज है। हाँ, मयूर पंख, मयूर पिछी का इसलिए है क्योंकि मयूर जो है इनको स्वेच्छा से छोड़ता है, उसे बिना कष्ट दिए ये पंख मिलते हैं। कोई पूछ सकता है कि मयूर को मारना पड़ता होगा, मयूर को अगर मार दिया जाए तो ये पंख ऐसे हो जाएंगे, मयूर को मार दिया जाए तो ये पंख ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे ये है, एकदम फ्रेश पंख ये है, तो ये ऐसा नहीं मिलेगा, ये ऐसा मुड़ जाएगा। और इसके पीछे बहुत बड़ी डंडी लकड़ी रहती है, उसके पीछे टू लगी रहती है, वो ब्लड, उसमें ब्लड लगा होगा अगर उसको मार के ले लिया, वो नहीं तो स्वतः गिरा होगा तो सहज रूप से गिरा है। मयूर को पकड़ के निकलेंगे नहीं, जब तक वो छोड़ना नहीं चाहे तब तक लहू लुहान हो जाएगी और वो पंख पूरे मर जाएंगे, बंद हो जाएंगे उनके ये, इसलिए ये पंख बिल्कुल सुरक्षित इन्हीं दिनों छोड़ती, अब छोड़ेगी पंख वैसे ही। और इसकी पांच विशेषताएं हैं बताऊंगा। अब श्रमणाचार शापकाचार अपन पूरा कर रहे हैं, किसी को कोई चीज पूछना हो तो अगली बार भी पूछ सकते, वैसे फिर अपन पढ़ेंगे शलाका पुरुष, हमारे जो विशेष महापुरुष हैं शलाका पुरुष हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके बाद रह जाएगा ध्यान योग और इस पर चल रहे हैं योग और ध्यान। वस्त्रधारी खड़े होके भोजन नहीं करेगा, बफे सिस्टम थोड़ी है। वस्त्रधारी खड़े होके भोजन नहीं नहीं तो ये लगी से लगी भी करने लगेंगे खड़े होकर, नहीं कि भोजन उन्हीं के लिए होगा जो वस्त्र, क्योंकि भिक्षु वही कहलाएगा, अपन सोचे वो भिक्षु तो है नहीं, भिक्षु वो कहलाएगा जो भिक्षा लेने जाता है और खड़े होकर के ले लेता भिक्षा और चले जाता खड़े खड़े, किसी के घर में बैठेंगे नहीं, ये तो अब हो गया है कि बैठते हैं, पहले ऐसा नहीं था, जाएंगे आपके यहाँ पर और जहाँ भी आपको चौकियों की भी आवश्यकता नहीं है, जमीन में ऐसे ही खड़े हो जाएंगे और खड़े ही खड़े रहेंगे, पूरा अंजलि लिए हुए खड़े रहेंगे, वनस्पति वचनस्पति वहीं पर हाथ धो करके खड़े होके फिर हाथ वहीं धो करके वापस खड़े खड़े वापस आ जाएंगे, बैठेंगे नहीं, अभी तो हम जाके बैठते हैं पूजन होती है फिर खड़े होएंगे फिर बैठ के हाथ खुला करेंगे, वो पूरा खड़े खड़े, अभी भी कुछ महाराज जी हैं जो कि खड़े खड़े पूरा करते हैं, तो एक्चुअली भिक्षु की हैसियत से वहां गए हैं बैठने के लिए नहीं। अभी साधक शावक रह गया, साधक शावक की परिभाषा तो लिख ली थी संलेखन लेने देते समय।
अगर आचार्य जी उपाध्याय जी या मुनि जी या शुलर जी या इनके दर्शन करने के लिए उसके लिए क्या विधि है?
जो अपन देव दर्शन की विधि करते हैं वही शास्त्र के लिए वही गुरु के लिए, देव गुरु शास्त्र तीनों को एक ही प्रोसीजर है, चावल चढ़ाएंगे पूजा करेंगे अस्त्र द्रव्य से कर सकते हैं, तीन प्रणाम अभी भी होते हैं श्वेतांबरों में, तीन प्रणाम करके ही भोग दी जाती है, घनी खम्मा आप लोग नहीं बोलते घनी खम्मा ये नहीं करते, अच्छा उस तरह बहुत करते हैं, श्वेतांबरों में रहता है वो पूछते हैं सुख साता, तीन बार उठेंगे बैठेंगे तीन बार प्रणाम करते हैं फिर सुख साता घनी खम्मा क्षमा करिएगा सुख साता है कि नहीं, तीन बार प्रणाम है तो ऐसे ही, लेकिन कम से कम एक प्रणाम तो निवेदित करने बस तो वही तो नहीं भोग देना तीन बार, तीन बार प्रणाम मतलब भोग देना नीचे बैठ करके तीन बार, पहले जाते ही साथ भगवान को प्रणाम किया और ढोक दे दी ये पहला प्रणाम कहलाया, फिर खड़े हुए फिर स्तुति करी फिर प्रणाम करके फिर ढोक दे दी ये दूसरा प्रणाम कहलाया, फिर बाद में जो कुछ लिए थे वो चढ़ा दिया कायस्थ कर लिया फिर ढोक दे दी नीचे, तीन बार ढोक देना पड़ेगी, तीन लोग के नाक हैं ढोक देना मतलब ढोक देना मतलब झुक करके नीचे प्रणाम, एक अंग का प्रणाम सिर झुकाना ये भी सीख ले, एक अंग का प्रणाम सिर झुकाना, चले जा रहे रास्ते से हाथ में बुक्स लिए हैं मुनि महाराज जी आ गए मंदिर पड़ गया क्या करें, सब सामान पटक करके वहीं लौट जाए क्या, ऐसा करते हैं लोग हाँ सही में, कई लोग ऐसे कर वहीं पर सब रख देते हैं और जल्दी से साफ संग थोड़ी मुश्किल होती, कहते नहीं एक अंग का प्रणाम सिर झुका देंगे सामान हाथ में नहीं है इसलिए, आप मान लो सामान नहीं लिए हैं, चले जा रहे हो, महाराज जी आते दिख गए या मंदिर आता दिख गया, क्या करेंगे? हाथ जोड़, दो अंग का प्रणाम। क्यों? सिर में तकलीफ है, नहीं झुक रहा, क्या करें? मान लो तो कहते दो अंग का प्रणाम। अगर सिर में भी वो नहीं है, तीन अंग का प्रणाम, वहीं खड़े रह जाएंगे जहां खड़े हैं, महाराज जी आ रहे हैं उसकी दूर से देख लिया, आ रहे हैं वहीं पर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, निकलने तक बस। चलते हुए मुनि के लिए या चलते हुए स्वयं व्यक्ति के लिए मंदिर इत्यादि पढ़ने पर या मुनि का सामना होने पर तीन अंग तक का प्रणाम हो सकता है। जब स्वस्थ बैठे हो अपने स्थान पर तब पंचांग नमस्कार या अष्टांग नमस्कार करना। बिल्कुल एकदम 100% मेरा कोई आशीर्वाद वाशीर्वाद नहीं बरसता उसे, वो कट ये लगता जल्दी से हट जाएंगे, कहाँ से भलाई आ गई है, तो बैड विशेष और मिल जाती है गुड विशेष की जगह। और कुछ लोग को बहुत अच्छे से मिलता है, जो लोग ऐसे खड़े रहते हैं दूर से ही देखते हैं, उनको देख लेता हूँ, तो उनसे आशीर्वाद देते हैं। गुड टाइम अच्छा करा।